श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है
सुदामा के प्यारे घनश्याम केवट के प्यारे श्री राम झूठे बेर तूने शबरी के खाए केवट सुदामा हम बन नहीं पाए सच्चे जीवन का दो वरदान
श्री साई रामा जय साई रामा श्री साई रामा
करीब करीब 20,000 वर्ष पहले आए थे। कभी आपने सोचा 20,000 साल बहुत लंबा समय है ये। 20,000 वर्ष पहले भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए, एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए, जिनकी गाथा, जिनकी जीवनी, जिनका चरित्र वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में है, और आज भी उस रामायण की चर्चा होती है, आज भी उस रामायण पर शोध होता है, रिसर्च होती है। आज भी प्रभु का नाम, प्रभु राम का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, भक्ति के साथ लिया जाता है। राम जी ने अपने जीवन में अपने चरित्र से इतने उदाहरण स्थापित कर दिए हैं जिसकी गणना नहीं कर सकते हम। एक पुत्र कैसा होना चाहिए? माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगा, पहला ये कि भरत को अयोध्या का राज्य बनाया जाए, दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। अब जरा आप विचार कीजिएगा, अगर एक माता अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती है, हो सकता है ऐसे माँ की ममता होती है, माँ का मोह होता है, माँ अपने पुत्र को सबसे आगे देखना चाहती है। भरत भी राम से कहीं कम नहीं थे, ना प्रेम में, ना भक्ति में, ना ज्ञान में। लेकिन राम जी को वनवास देना ये कौन सी बात है? बात बनी नहीं। जरा सोचिएगा पल भर के लिए। कहा जाता है जो एक बार महाराज दशरथ ने दर्पण में देखा उनके बाल सफेद हो गए, या कुछ बाल अपना रंग बदल रहे हैं, अनायास उनके मन में विचार उठा, अब मुझे अपने पुत्रों को राज्य दे देना चाहिए। भगवान राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां आरंभ हो गई, घोषणा कर दी गई थी। इसी बीच में कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश उनको चिंता सताने लग गई, अगर राम जी यहां के राजा बन जाएंगे तो रावण को मारने लंका कौन जाएगा? कहते हैं देवताओं को चिंता हुई, देवताओं ने विघ्नेश्वरी देवी से प्रार्थना करी, विघ्न डालो। विघ्नेश्वरी देवी ने मंत्रा का रूप लिया, या मंत्रा के मन में जाके बैठ गई, या माता कैकेयी के मन में बैठ गई। मंत्रा माता कैकेयी की सेविका थी। मंत्रा के उकसाने से माता कैकेयी का मन बदल गया, और उन्होंने ये 2 वरदान मांग लिए। अब विचार कीजिएगा, हम सब लोग दोष देते हैं माता कैकेयी को, कि माता कैकेयी ने अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए वरदान मांगा और माता कौशल्या के पुत्र को वनवास दे दिया। किसी शास्त्र में यह भी कहा गया है कि भगवान राम ने एक दिन पूर्व माता कैकेयी से प्रार्थना करी थी, मां ऐसा वरदान मांगो ताकि मैं वनवास को जाऊं। बहुत सी टिप्पणियां लिखी गई हैं, बहुत सी कमेंट्रीज लिखी गई हैं, टीकाकारों ने क्या क्या लिखा है। लेकिन सारी बात का जो एक कहते हैं ना समरी जो सार है कि माता कैकेयी ने वरदान मांगा महाराज दशरथ बड़े दुखी हो गए वह भरत को राज्य देने को तैयार हो गए लेकिन राम को ये बोलने के लिए तैयार नहीं हुए कि तू वनवास चला जा 14 वर्ष के लिए कहा जाता है महाराज दशरथ शैया पर दुखी अवस्था में अपने मुंह को झुकाकर बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं उनका स्वास्थ्य खराब होने लग गया जब राम जी को पता लगा कि ऐसी घटना घटी है उन्होंने स्वयं ही 14 वर्ष के लिए वनवास जाना तय कर लिया रघुकुल रीत सदा चली जाई रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए मेरे पिता के शब्द झूठे ना हो आने वाले समय में कोई ये ना बोले कि महाराज दशरथ ने अपना वचन नहीं निभाया था अपना वरदान नहीं दे पाए थे पूरा नहीं कर पाए थे मेरे पिता के नाम पे कोई कलंक ना लगे हमारे कुल की कीर्ति उस पे धब्बा ना लगे भगवान राम ने कहां कहां तक सोचा तनिक भर भगवान राम के चेहरे पे तनिक भर संकोच नहीं था तनिक भर कष्ट के चिन्ह नहीं थे हमें ये क्या सिखा रहा है ये सिखा रहा है सर्वप्रथम आपका पुत्र कैसा होना चाहिए माता पिता के नाम पे कुल के नाम पे परिवार के नाम पे राज्य के नाम पे कहीं पर कोई कलंक ना लगे कोई धब्बा ना लगे चाहे मुझे कितने भी कष्ट उठाने पड़े लोग कहते हैं महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए रामायण में दिया है ये बात सही है राम जी भी चले गए शरीर को छोड़कर कहते हैं रामायण के जो पात्र थे सबने अपना शरीर छोड़ दिया समय के साथ साथ तीनों माताएं महाराज दशरथ चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हाँ हनुमान जी आज भी हैं आज भी जीवित हैं विभीषण आज भी जीवित हैं काकबसुंडी कहा जाता है आज भी हैं कहा जाता है उस काल में से 7 लोग आज भी हैं 5 या 7 लेकिन हम जहां बात कर रहे हैं मंत्रा ने अपना शरीर छोड़ दिया लेकिन आज भी जीवित है। मंत्रा ने क्या किया था? माता कैकेयी को उकसाया था गलत काम करने के लिए, गलत वरदान मांगने के लिए उकसाया था। माता कैकेयी की मति को भ्रष्ट किया था या मति को बदल दिया था। हालांकि कहा जाता है देवताओं ने प्रार्थना करी थी विघ्नेश्वरी देवी से, लेकिन वो मंत्रा आज भी जीवित है। वो मंत्रा आज भी घर घर में है। कई लोग ऐसे नहीं मिलते आपको जो उस बंदे की बुराई करते हैं, उस बंदे के बारे में बात करते हैं जो आपके सामने नहीं है। कहते हैं गॉसिपिंग, नहीं तो पेट में भोजन नहीं पचता। और कमाल की बात यह है कि इतना आनंद आता है गॉसिपिंग करने में, गपशप मारने में, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां, बुराइयां करने में। ये बताता है कि आपकी मानसिकता कैसी है, आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सी वासनाएं आपके मन में उबर उबर के ऊपर आ रही हैं, कौन सा गुण प्रबल हो रहा है आपके भीतर। विचार कीजिएगा, जरा सोचिएगा पल भर के लिए। आप हम अपने जीवन में ना जाने कितनी बार जाने में या अनजाने में लोगों के कानों में विष घोल जाते हैं। किसी की अगर बुराई कर रहे हैं वो विष घोलने से कम नहीं है। किसी के कानों में आपने चंद बातें कूट कूट के भर दी, उस व्यक्ति का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। वो खासकर भोजन करते वक्त जब आप ऐसी बातें सुनते हैं या करते हैं जहां भोजन आप चबा रहे हैं, खा रहे हैं और साथ में इस प्रकार की बातें सुन रहे हैं कानों से या आंखों से देख रहे हैं, या टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, या साथ साथ में किताब में इस प्रकार के चर्चाएं पढ़ रहे हैं, उन सब की ऊर्जा, उन सब की नकारात्मक ऊर्जा, उन सब की नेगेटिव एनर्जी भोजन के साथ तर आपके अंदर जाती है, आपके रक्त में प्रवाहित हो जाती है। इसलिए कहा गया भोजन करने से पहले भगवान से प्रार्थना करके भोजन को शुद्ध किया जाए, और भोजन करते वक्त अपने मन के अंदर कोई वासना को ना आने दें। रामायण के 7 अध्याय, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, अगर इसको मानव का रूप दे दिया जाए तो बाल कांड जो है हमारे चरण है, अयोध्या जंगा है, अरण्य कांड उदर है, किशकंदा कान हृदय है, सुंदर कान कंठ है, लंका कान मुख है, उत्तर कान मस्तक है। रामायण में रामचरितमानस में सबसे पहला पहला जो अध्याय है वह बालकांड है। बचपन चारों भाइयों का, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाइयों का बचपन, उसकी गाथा है। हमारा जीवन भी तो बचपन से आरंभ होता है, बच्चों से शुरू होता है। कोई बड़ा पैदा नहीं होता, चाहे मानव हो पक्षी हो या पक्षी हो। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि बालक में पाप नहीं होता, अभिमान नहीं होता, उसमें छल कपट नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बच्चे का ख्याल उसकी मां करती है। बच्चा चलाकी नहीं कर पाता, निर्दोष होता है। बालक के हाथ में आप हजारों डॉलर दे दें, रुपए दे दें, उसका अभिमान नहीं आएगा, उसका पता नहीं लगेगा, उसके भीतर एक भोलापन है। वो भोलापन आपको मोहित करता है। बच्चा प्रेम का भूखा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे में भगवान होता है। भगवान भी प्रेम के ही तो भूखे हैं। बच्चा सरल होता है, सिंपल होता है, इसलिए कह दिया गया बाल कान निर्दोष कान है। बालक जैसे निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखेंगे तो राम के स्वरूप को हम पहचान पाएंगे। हमें बालक की तरह सरल होना होगा। कहते हैं बाल कांड को बारंबार पढ़ने से मानव के भीतर सरलता आती है। मैंने कहीं पढ़ा था, एक कोई साहब थे, मुझे उनका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा, वे कुछ रिसर्च कुछ शोध कर रहे थे। उन्होंने एक कक्षा के कुछ बच्चों को एक तारक मंत्र दिया जिसमें 7 शब्द हैं। आप जानते हैं क्या तारक मंत्र? उन भाई साहब का नाम था श्रीमान तिवारी। शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने कुछ बच्चों को एक तारक मंत्र दिया, श्री राम जय राम जय जय राम। और दो कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। इन 14-15 बच्चे जो भी थे उनको बताया गया कि रोज समय इस मंत्र की एक माला पढ़ रही है बस। कुछ समय के बाद कहा जाता है 40 या 48 दिनों के बाद देखा गया कि बच्चों का व्यवहार बदल गया, उनका बिहेवियर बदल गया, उनका कैरेक्टर बदलने लग गया, उनका चरित्र बदलने लग गया, उसमें परिवर्तन आ गया। जो बच्चे श्री राम जय राम जय जय राम का जाप नित्य कर रहे थे, 48 दिनों में उनके जीवन में उनके चरित्र में बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आने लग गया। आप क्या समझते हैं इसमें ताकत किसकी थी? राम नाम की। राम नाम की ताकत तो देखिए आप। इससे भी पीछे जाते हैं, रत्नाकर नाम का एक डाकू जो जंगल में वन में रहता था, आते जाते राहगीरों को लूटता था, उनके धन संपत्ति ले लेता था किस लिए अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए एक दिन वहां से साधु गुजर रहे थे नारद जी मेरे ख्याल से उनको पकड़ लिया क्या जो भी साधु तो उनको पकड़ लिया उनको बोला भाई देखो ऐसा है या तो अपनी संपत्ति जो तुम्हारे पास मुझे दे दो या तुम्हें मैं मार दूंगा उस साधु ने कहा बेटा तुम इतना घिनौना कर्म करते हो क्या तुम्हारे पाप कर्म का फल तुम्हारे घर वाले भोगेंगे जिसके लिए तुम कर रहे हो रत्नाकर बोला क्यों नहीं करेंगे मैं उनके लिए कर रहा हूं तो बेटा पूछ क्या हो कहते हैं रत्नाकर ने उस साधु को पेड़ से बांध दिया उल्टे पांव दौड़ता हुआ घर गया घर जाके अपने माता पिता से पूछा हे माता पिता मैं आप सबका लालन पालन करने के लिए आपका पोषण करने के लिए घर चलाने के लिए अपने परिवार को चलाने के लिए मैं लोगों को लूटता हूं कहा जाता है मुझे उससे पाप लगेगा क्या आप मेरे पाप के भागीदार बनेंगे माता पिता ने साफ नकार दिया मना कर दिया नो वे तुम्हारा कर्तव्य है हमें देखना लेकिन अगर तुम पाप कर्म करते हो उसमें हम कोई भागीदारी नहीं करेंगे अपनी पत्नी से पूछा अपने बच्चों से पूछा सबने मना कर दिया उल्टे पांव दौड़ते हुए रत्नाकर जी वापस आए जंगल में साधु के चरणों में गिर पड़े कहने लगे व्हाट इज दिस ये क्या है मैं आज तक सोचता रहा कि मैं जो कर्म कर रहा हूं मुझे उसका कोई फल जो है मेरे घर वाले उसको साथ भोगेंगे यहां तो कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है अगर ये पाप कर्म है जैसा आप कहते हैं मेरा उद्धार कीजिए कहते हैं साधु ने उनको एक मंत्र दिया बोला राम खाली इसको पढ़ते रहो कहते हैं रत्नाकर वहीं पर बैठ गया राम नाम का जाप करने लगा मंद बुद्धि का तो था मंत्र को भूल गया कुछ समय के बाद फिर याद आया मरा 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 बोलने लग गया मरा 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 लेकिन इट बिकेम ऑटो करेक्टिव अब जब मरा 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 बोलेंगे फिर भी राम राम बन जाएगा कुछ समय के बाद वो साधुवर वहीं से गुजर रहे थे देखा वहां पर एक मिट्टी का ढेर लगा है वहां से आवाज नहीं आ रही लेकिन वहां से एक वाइब्रेशन आ रही है एक एनर्जी आ रही है शक्ति का प्रवाह हो रहा है मैं समझ गया यहां पर वही रत्नाकर डाकू बैठा हुआ राम नाम का जाप कर रहा है उन्होंने उस मिट्टी के ढेर को जो दीमक थी दीमक को टर्माइट बोलते हैं अंग्रेजी में उन्होंने दीमक को तोड़ा वहां से निकला एक नया मनुष्य उस दीमक को उस टर्माइट को संस्कृत में बोलते हैं बाल्मिक जो बाल्मिक से पैदा हुआ जो बाल्मिक से बाहर आया उसका नाम पड़ गया बाल्मीकि उस बाल्मीकि ने बाल्मीकि रामायण लिख डाली एक डाकू के जीवन में परिवर्तन आया एक महान साधु बन गया जिसका नाम आज भी है 20,000 वर्ष होने के बावजूद भी किसकी महिमा थी राम की किसकी महिमा थी राम नाम की उसी राम नाम का जाप हनुमान जी आज भी कर रहे हैं अब आपके पास विकल्प है कौन सा नाम आपको जपना चाहिए जय श्री साईं राम